तो आज के इस भट्टी में हम आदरणीय भाई साहब का तहे दिल से स्वागत करते हैं। ब्राह्मण परिवार में आदरणीय भाई साहब के परिचय की जरूरत नहीं है। भाई साहब हमारे रूरल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विंग के वाइस चेयरपर्सन हैं। 1972 से ही आपने अपने जीवन को समर्पित किया हमारे ग्राम विकास प्रभाग के जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं, टेरेस गार्डन, योगिक खेती, गोकुल गांव, योगिक गृह वाटिका जैसे कई सारे प्रोजेक्ट्स आपके देखरेख में, आपकी प्रेरणा में चलते हैं। तीनों ही परिसर में फोटोकॉपी डिपार्टमेंट, स्टेशनरी आदि का कार्य भी आपकी देखरेख में ही चलता है। और सबसे बड़ा खजाना ब्राह्मणों का क्या है? मुरली। और मुरली हमें आदरणीय भाई साहब के द्वारा प्राप्त होता है। मुरली में जो सार वरदान और श्लोगन होता है वो बाबा ने आपको दिव्य बुद्धि का वरदान देकर निमित्त बनाया है, उसे एक्सट्रैक्ट करके रोज की मुरली में डालकर हम सभी तक पहुंचाने के लिए। संतुष्टता आपके जीवन जीने का अंदाज है। पुरुषार्थ करते ऐसा कि हर कल से बेहतर आपका आज है। आपकी बातों में रहता गहरा राज है, आपके द्वारा ही हमें मिलता बाबा की मुरली का साज है। आपके द्वारा ही मिलता हमें बाबा की मुरली का साज है। तो भाई साहब हमें मार्गदर्शन देंगे, परिवर्तन का आधार वैराग्य। आदरणीय भाई साहब,
ओम शांति। सभी पांडव भवन की इस अव्यक्ति वातावरण की भी अच्छी अच्छी अनुभूतियां कर रहे हो, बाबा के इस मधुबन घर में कहते हैं कण कण से तेरी याद आती है। किसी भी गली में जाएंगे, बाबा यहाँ पर बैठते थे, बाबा यहाँ योग करते थे, बाबा यहाँ बच्चों के साथ खेलते थे, यहाँ पिकनिक करते थे। सब स्थान बाबा की चरित्र भूमि, कर्म भूमि हमें योग के गहरे अनुभव कराती है। जहाँ तक परिवर्तन का आधार है, हम सब जिस दिन से बाबा के बने उस दिन से कोई न कोई परिवर्तन तो आया ही है, लेकिन वैराग्य हमारे जो सूक्ष्म संस्कार हैं, आदतें हैं, उनमें परिवर्तन ले आता है। इसलिए शुरू से लेकर बाबा ने बच्चों को वैराग्य दिलाया इस कलयुगी सृष्टि से कि बच्चे संसार असार है, इसमें कोई सार नहीं है, ये जाने वाली दुनिया है, इसमें कहीं भी फंसना नहीं। ब्रह्मा बाबा को जब कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का साक्षात्कार हुआ, अंदर से वैराग्य आ गया, ये हीरे जवाहरात का बिजनेस क्यों करूं, किसके लिए करूं। बाबा ने कहा ये हीरे तो अभी मुझे पत्थर लगते हैं, ये मुझे नहीं करना, वैराग्य आ गया। हम सब ने अपनी सलौकिक जीवन में इसी अनुभव के आधार से, मुझे वो दिन याद हैं जब मैं 71 में मधुबन आया था, 15 साल की उम्र थी, 9th में पढ़ता था। तो एक मास रहने के बाद मुझे यही रहना है, यही मेरा घर है। तो दादी जी ने हमारा जब इंटरव्यू लिया, यही कुटिया के पास झूले पर बिठा करके, वही झूला भी पड़ा हुआ है, मुझे वो दिन याद। एक तरफ दादी जी थी, एक तरफ मैं था, तो जितने प्रश्न उन्होंने पूछे मैंने सच्चाई से जब जवाब दिया, तो मुझे कहा अभी तुम्हें मधुबन रहने की छुट्टी नहीं मिलेगी क्योंकि तुम बहुत छोटा है, पढ़ाई भी कम है, कम से कम 4 साल और पढ़ लो, जब 18-19 साल के होना तब मधुबन आना सेवा में। तो मैंने भी उस समय यही शब्द कहे थे, दादी मेरे पिताजी कहते हैं दुनिया तो विनाश होने वाली है, क्यों बिना क्या करेगा पढ़ करके। तो वैराग्य दिलाया था और उसी आधार से जब मैंने दादी जी को कहा कि दादी जब दुनिया विनाश होने वाली है तो मैं पढ़ के क्या करूं, तो दादी बहुत प्यार से मुस्कुराने लगी, कहती है वो तो ठीक लेकिन अभी तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, हमारे विद्यालय का नियम नहीं है हम 15 साल की उम्र में कोई को समर्पित करें, इसलिए 1-2 साल जाओ पढ़ लो, फिर अगर तुम्हारी दिलवान न लगे तो फिर चिट्ठी लेके आ जाना। और ड्रामा ऐसा था जो वैराग्य को दिलाने के लिए एक और बात आई, मैं यहाँ से गया और 71 में ही बांग्लादेश को आज़ाद कराने की वो लड़ाई छिड़ गई और इतनी भयानक थी वो लड़ाई, हिंदुस्तान पाकिस्तान की ही थी, लेकिन शाम को 6 बजे ब्लैकआउट हो जाता था, अंधेरा करो, कोई बाहर नहीं निकलेगा, सायरन बज जाते थे। तो मैं जब पढ़ता था स्कूल में तो वहाँ 6 बजे के बाद कोई बाहर निकल ही नहीं सकता, बिल्कुल जैसे कर्फ्यू लग गया शहर में। तो मेरे को आया एक तो दुनिया तो विनाश हो रही है, कलयुग तो विनाश हो रहा है, और दादी कहती पढ़ लो, क्या करूँगा मैं पढ़ करके, आ गया वैराग्य। और मैंने कहा कि अभी मुझे नहीं रहना है, चिट्ठी लिया पिताजी की और केवल 5-6 महीना पढ़ा, सिर्फ हाई स्कूल पूरा किया और सीधा ही मधुबन आ गया। दादी कहती तुम आ गया क्या, कैसे आ गया, चिट्ठी दिखाई तो चिट्ठी देख के बस खुश हो गई, कहती ठीक है रहो भले रहो। लेकिन बाबा के घर में आकर के स्टूडेंट लाइफ का पूरा आनंद लिया, कारोबार तो सारी कर्मणा ही थी लेकिन एक लक्ष्य था कि बाबा के घर में कुछ सीखेंगे। तो सबसे पहले जब टाइप सीखी तो सिंधी सिखाई कि सिंधी सीखो पहले, बिना सिंधी के टाइप काम नहीं आएगी, क्योंकि दादियों की जो लिपि है तो हिंदी लेकिन लिखत में सिंधी है, बाबा की मूलियाँ भी उसी में ही हैं। तो मैंने पहले वही सीखी, 72 में आते ही दादा विश्वरत्न ने हमें 1 घंटा रोज पढ़ाया सिंधी, और जब वो सीख लिया तो टाइपराइटर, एक टाइपराइटर थी यहाँ मधुबन में, टाइप सीखा। और टाइप और सिंधी सीखते ही सेवाएं मिल गई, स्टूडेंट लाइफ थी, दादी ने कहा तुम अभी बाबा के साथ जो बाबा रात भर आते हैं तुम बैठेगा, कोई नहीं बैठता है क्योंकि बाबा तो रात भर बैठते थे, और लिखने की ड्यूटी टेप रिकॉर्ड तो थी ही नहीं मधुबन में, तो रिकॉर्डिंग नहीं होता था, सिर्फ नोट्स लिए जाते थे। तो दादी ने कहा यीशु दादी 1-2 घंटा बैठती है, बाकी टाइम बाबा के पास कोई नहीं होता, तुम बैठो, ठीक है, भाग्य मिला। तो 73 से ही मैं बाबा के पास, जहाँ भी बाबा आए, और बाबा पहले ऐसे ऑफिशियल नहीं आते थे, भोग लगाओ ये करो, वो नहीं था सिस्टम। गुलजार दादी को बाबा के कमरे में गद्दी जो पड़ी है ना, उस गद्दी पर बिठा देते, और गुजरा दादी बैठती ट्रांस में जाती और वहीं पर बाबा आ जाते गद्दी पर। तो लिखने वाले को क्योंकि माइक नहीं था इसलिए बहुत स्लो बाबा बोलता था, आवाज़ तो समझ में नहीं आएगी, तो बिल्कुल कोने में गद्दी के बिल्कुल बाजू में मैं जाके डायरी पेन लेके बैठता था, और जिसको भी बाबा जो कुछ बोले मैं कैच करता था, लिखता था उसको। और लिखने के बाद सवेरे हमारे पास लाइन लगती थी, कि मुझे बाबा ने क्या बोला, मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं उसको हाईलाइट कर लेता था, ये भाई यहाँ का है, ये बहन यहाँ की है, तो फिर उसको टाइप करके दे देता था। तो ऐसे टाइप सीखी, बाबा के साथ रहे, और दादियाँ तो इतनी निर्माणचित थी, सिखाने की भावना थी, तो जब हम रात भर लिखते तो दूसरे दिन कहती तुम आ करके क्लास में सुनाओ। अब क्लास तो वही हिस्ट्री हॉल था, और उस हिस्ट्री हॉल में कोई सोफा कुर्सी नहीं थे, गद्दी पर बैठो और दादियाँ ऐसे बैठती थी ऐसे नीचे, तो आप समझ सकते हो मैं इतना छोटा, कोई अनुभव नहीं दुनिया का ज्ञान का, और हम क्लास टीचर बने और वो स्टूडेंट हमारे सामने ऐसे बड़े बड़े बैठे, दीदी दादी बड़े भाई सब ऐसे लाइन में कतार में बैठ जाते। तो जो सुना बाबा की बातें सुनानी ना तुमको, अपनी बातें थोड़ी सुनानी है, डरना नहीं, जो कुछ लिखा है तुम सब सुनाओ पढ़ करके। तो सुनाता था डरते डरते, फिर कहती थी ये पॉइंट बहुत अच्छी है, इसको मुरली के रूप में टाइप करके दो, ये बनाओ। तो ऐसे करके 73-74 से ही अव्यक्त बाबा की एक एक मुरली लिखने का टाइप करने का चांस मिला। और दादियों को एक लक्ष्य रहता था, क्योंकि बाबा की मुरलियाँ रिवाइज हो रही हैं, और रिवाइज मुरलियों में पहले बाबा कई सिंधी शब्द कहीं कोई उस समय की परिस्थितियों के अनुसार से बाबा बोलते थे। तो दादी कहती थी अभी विस्तार हुआ है, सेवाएं बढ़ रही हैं, सेंटर बढ़ रहे हैं, अभी इतनी बड़ी लंबी मुरली भेजने की जरूरत नहीं, इसको ठीक करो, शॉर्ट करो, और जो शब्द समझ में नहीं आते हो मेरे से पूछो, पहले तुम समझो फिर दूसरों को भेजो। तो बड़ी दादी के साथ डेली कोई ऐसा दिन नहीं मुरली के बाद ये आधा घंटा दादी के पास जाना है, नहीं जाएंगे तो दादी नाश्ता नहीं करेगी, पहले आओ मुरली के बारे में बात करो फिर जाओ। तो दादी जी ने मुरली की सेवा दी, और मुरली में प्रश्नोत्तर लिखना, साल लिखना, ये सब। फिर कहते दीदी बहुत अच्छे प्रश्न लिखती है, वैसे दीदी लौकिक में पढ़ाई नहीं की थी, स्कूल नहीं गई थी, लेकिन बाबा ने उनको ऐसा सिखाया था जो ऐसे प्रश्न निकालती थी तो सब क्यों सबको फेल कर देती। मेरे कहती तुम मेरी डायरी ले जाओ, तुमको जो अच्छा लगे वो टाइप करो। अब दीदी की राइटिंग पढ़ना तो मेरे बस की बात नहीं थी, क्योंकि वो सिंधी भी नहीं होती थी, हिंदी भी नहीं होती थी, इंग्लिश भी नहीं होती, मिक्स भाषा होती थी। फिर भी धीरे धीरे सीख लिया, और फिर प्रश्नोत्तर निकालना, टाइप करना। फिर दादी कहती थी जो दीदी ने प्रश्न निकाले हैं उसमें से जो तुमको अच्छा लगता है वो मुरली के ऊपर लिखो, पहले लिखो, साल लिखो, प्रश्नोत्तर लिखो, फिर थोड़े दिन के बाद का इसकी मूल धारणा की बातें लिखो। क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो एक घंटा का समय नहीं दे पाते, कोई कोई कहते हैं दीदी हमें मुरली फोन पर बता दो, आज मैं क्लास में नहीं आ पा रहा हूँ। तो सार उसका उनको मिलना चाहिए, मूल पॉइंट्स उनको पता चलनी चाहिए। तो ऐसे दादी ने सब एडिशन कराती गई। फिर एक बार बाबा यहाँ आए, और बाबा ने मैसेज दिया कि केवल मधुबन निवासियों से बाबा पर्सनल मिलेंगे। ओम शांति भवन बन गया था, 88 की बात है ये, तो पर्सनल मिलेंगे। तो मधुबन वाले तो उछल रहे थे, पता नहीं आज बाबा ने हमें इतना गोल्डन चांस दिया। तो हम मधुबन निवासी 120 भाई थे उस समय, और 40-50 बहनें थी, और भी बुजुर्ग बुजुर्ग बहनें थी, माताएं। तो जब बाबा शाम को आए 7 बजे के लगभग, फिर मुरली चलाई 15-20 मिनट, और फिर मधुबन वालों से पर्सनल मिलना शुरू किया। और जब मिलना शुरू किया तो दादियाँ टूट जाती हैं, भाई बाबा अभी एक एक से मिलेगा। तो सुबह 7 बजे दादी जब आई विदाई देने के लिए, 12 घंटे के बाद तो बाबा के पास सामने मैं बैठा था लास्ट। तो जब मैं बाबा से मिल के उठा तो एक अलग से कोने में बुला के बोलती है, बाबा ने रात भर क्या किया। ये सब माताएं बहनें तो रह गई, मधुबन वाली बहनें तो सब रह गई, और केवल भाई लोग मिले। क्या इतना बाबा ने 12 घंटे में किया। तो मैंने कहा, दादी बाबा ने आज बहुत वरदान दिए, एक एक को वरदान, बहुत वरदान दिए। अच्छा, वरदान दिए सबको, जाओ टाइप करके ले आओ, जो भी कहा है सब टाइप करो जा करके। और मैंने पूरी रात लिखा था, इतनी मोटी डायरी हो गई थी, क्योंकि एक एक को बाबा ने आधा घंटा 45 मिनट एक एक को बाबा बैठ के पूरी दृष्टि देना, टोली देना, बातें करना, जैसे बच्चे से बात करते ना ऐसे। तो जब मैं टाइप करके ले गया, इतना सारा पूरा दिन टाइप किया, शाम को ले गया दादी के पास, तो दादी कहते क्या करेगा ये सब इतना। तो मैंने भी बच्चों जैसा जवाब दिया, हमने कहा दादी बाबा ने जिनको बोला है ना उनको टाइप करके दे देता हूँ, अच्छे कागज पर फोटो उनका निकला है, फोटो लगा देंगे और अच्छी डिजाइन वाले कागज पर छाप करके दे देंगे, तो सब अपने अपने ऑफिस में लगाएंगे, पढ़ेंगे, खुश होंगे। दादी ने मेरे को आंख दिखाई, क्या बोलता है, तुमको ही बोला ने बाबा ने, मधुबन वालों को ही बोला, ये सारा ब्राह्मण परिवार बाबा को सामने है, ये सबके पास जाना चाहिए। लेकिन तुमने कहा ना वरदान है, तो वरदान के रूप में जाना चाहिए। अब मैं फंस गया वरदान के, क्योंकि बाबा ने कोई भाव के रूप में तो बोला ही नहीं है, शिक्षाएं दी है, प्यार दिया है, विशेषताएं सुनाई है। तो जब उसको मैंने सेटिंग की तो 120 वरदान तो कम से कम मैंने 365 दिन मुरली के अंदर सेट कर दिए। लेकिन पहली लाइन मुझे बनानी पड़ी, विधि भाव वाली लाइन, जिसमें उसका आधार विधि फिर उसकी प्राप्ति। तो लक्ष्य रख करके पूरा साल वो 120 वरदान हमने चलाए, और लास्ट में जाके दादी को बोला, दादी वरदान पूरे हो गए। मैं तो बड़ा उमंग उत्साह से गया, वरदान पूरे हो गए। कहती कैसे पूरे हो गए, तुमको पता है इससे बहुत अच्छी सबको पालना मिली है, सबका अच्छा चिंतन चलता है, दादियाँ इस पर क्लास कराती हैं, वरदान बंद नहीं होने चाहिए। मैं कहाँ से लाऊं। कहती है 69 से मुरलियाँ चली हैं, अभी 90 आ गया, इतने सालों की मुरलियाँ वरदान ही तो हैं, तुम सब पढ़ो और उसका वरदान बनाओ। सेवा मिल गई। लेकिन जब वो वरदान बनाए तो 6 साल तक एक भी वरदान रिपीट नहीं किया, एक से एक नया वरदान निकला। फिर उसके बाद तो 5 साल की मुरलियाँ ही उसके बाद रिपीट हुआ है, फिर भी कोई नई बात बाबा की मुरलियों से मिलती है, तो लक्ष्य रखते हैं कि उसको हम डालें अंदर। ये सेवा बाबा ने दी, दादियों ने दी, और बाबा बहुत प्रसन्न होकर के खुशी खुशी से वरदान देते रहे। जब मैं बाबा के पास गया, क्योंकि बाबा बैठे हैं और मैंने डायरेक्ट मुरली टाइप की, प्रिंट की, और बाबा के विदाई के पहले मैं बाबा के हाथ में दे आया, बाबा ये आपकी मुरली है आज की। तो जब बाबा को मैं मुरली देने जाता कि आज की मुरली तुम टाइप कर ली, हमने हाँ जी बाबा, साथ साथ ही कर लेता था, सिर्फ हेडिंग बनाता था उसकी, तो हेडिंग बाबा जरूर पढ़ता था, अच्छा बहुत अच्छा, तेरे को तो बुद्धि का वरदान मिल गया है, दिव्य बुद्धि का वरदान बाबा ने दे दिया। तो ऐसे बाबा के घर में मुरली की सेवा मिली। लेकिन दीदी कैसे उपराम होती गई, जो वैराग्य की बात है, बाबा को तो साकार में हमने मधुबन में नहीं देखा, पालना तो बहुत मिली पत्रों से। बाबा हर 15 दिन में एक पत्र लिखते थे जिसमें राजेंद्र प्रसाद बच्चे को खास याद देना अंडरलाइन होता था। लेकिन जब मैं मधुबन आया तो बाबा अव्यक्त हो चुके थे, और अव्यक्त बाबा के साथ बैठ करके हर कार्य सेवा करने का चांस मिला। तो दीदी बहुत अच्छी एक्टिव इंस्टीट्यूट, बाबा के हर कार्य को उन्होंने संभाला, क्योंकि बाबा जब अव्यक्त हुए तो अव्यक्त होते समय दीदी साथ थी, मैंने पहले से साथ थी। मम्मा ने जब 24 जून 65 में शरीर छोड़ा तो बाबा ने दीदी को मम्मा की सीट पर बुला के रखा। दीदी रहती थी दिल्ली कमला नगर में, सेवा कर रही थी। और बाबा दीदी की बहुत सारी विशेषताएं थी, दीदी मनमोहिनी की। मैं समझता हूँ इस ग्रुप में तो कोई नहीं है दीदी को देखने वाला, है कोई? ठीक है, आप हैं। अच्छा, लाजमैन है ना, अच्छा दिल्ली के। तो दीदी की पालना तो जिन्होंने लिए वो जानते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर, ईश्वरीय नियम मर्यादाएं क्या होती हैं, एक दिन भी कोई नीचे ऊपर ना करे। हम लोगों को तो इतना एक्टिव, इतना अलर्ट बना करके रखा था, बहुत सारी शिक्षाएं, बहुत सावधानी हमें मिलती थी। कोई भी बात गई तो दीदी कभी सुनी सुनाई बातों को नहीं मानती थी। आपने कोई कंप्लेन कर दी, अपना दृष्टिकोण बदल लिया, ऐसा नहीं। कोई भी कंप्लेन करने जाए, कोई भी बात लेके जाए, तुम बैठो इधर और उसको बुलाओ इधर, जिसके बारे में तुमने बोला, आमने सामने बात करके, मिला करके, क्या हुआ, कैसे हुआ, उसी समय उसका समाधान करके, दोनों को गले लगा करके, मिला के, टोली खिलाओ एक दूसरे के मुंह में और जाओ, आगे के लिए कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। तो ऐसे दीदी की अलौकिक पालना थी और नियम मर्यादाओं में बहुत एक्टिव थी। बाबा के बाद दीदी और दादी की जोड़ी ने बाबा के यज्ञ को इतना विस्तार दिया, हर चीज ध्यान दी। जो कुछ आकार में बाबा ने कहा है वो हमें करके दिखाना है, चाहे विदेश की सेवाएं शुरू हुई, चाहे यहाँ विस्तार हुआ। हर साल मुझे 71 से अभी तक की कहानियां दादी की याद है, हर साल एक नया भवन बनवाया और हर साल 2-4-10 भाइयों को समर्पित होने का चांस मिला। क्योंकि जब भवन बनेंगे, लोग बढ़ेंगे, तो उनको संभालने वाले, मकान संभालने वाले, सेवा साथी चाहिए। तो दीदी की परखने की शक्ति बहुत तेज थी। दादी सेवाओं का विस्तार कर रही थी और दीदी उसको कैसे चलाना है, संभालना है, कैसे योग्य हैंड्स रखने हैं, उस पर नजर रखते थे। तो एक एक को पर्सनल पालना देना, सबसे दो मूल शिक्षाएं हमें पहले पहले जो कान में मिली वो सबसे पहले ये थी, देखो यहाँ आए हो ना, संघ की संभाल करना। तो प्रश्न उठ गया, संघ की संभाल यहाँ भी चाहिए क्या? दुनिया का संघ छोड़ के यहाँ आ गए और यहाँ भी कहते हैं संघ की संभाल करना। तो जो मैंने थोड़ा सा चेहरा देखा, उन्होंने बोला मैं कुछ नहीं, यदि तेरे को प्रश्न उठ गया होगा कि यहाँ भी संघ की संभाल चाहिए, हाँ यहाँ भी चाहिए। कई लोग केवल सेवा के लिए समर्पित हुए हैं, सेवा अच्छी करते हैं, योग्यताएं हैं, ड्रेस पहनते हैं, भोजन खाते हैं और सेवा करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति का कोई भी उनको लक्ष्य नहीं है। जिस लक्ष्य से यहाँ पर बाबा के घर में हम सब आते हैं, अगर उस पर कोई का ध्यान नहीं है, अमृत वेले नहीं उठते हैं, मुरली क्लास नहीं करते हैं और इधर उधर की बातें करना, घूमना, गपशप करना, ऐसे लोगों के संग से बच के रहना, पहला पहला मंत्र ये मिला, उनके साथ बैठना भी नहीं, घूमना भी नहीं, अटेंशन देना, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए खुद समय निकालना। अगर किसी को अपने को परिवर्तन करना है तो उसकी सबसे अच्छी विधि क्या है? अपना टीचर खुद बनो। कोई कितना भी आपको पढ़ाएगा, समझाएगा, कोई बात समझ में आएगी, कोई नहीं आएगी, लेकिन अगर हम खुद को पढ़ाते हैं, अकेले में बैठ करके अपने से बातें करते हैं, भट्टी में हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को देखते हैं, अपने आप से बातें करते हैं, अपने को अंदर से एकांत में ले जाते हैं, बैठे संगठन में है लेकिन एक के अंत में चले जाते हैं। और फिर अपने को देखते हैं, बाबा मेरे से क्या चाहता है। जैसा बाबा मुझे बनाना चाहता है उसमें अभी तक भी कितनी परसेंटेज में कमी है। बाबा का लक्ष्य अपने बच्चों को अपने समान संपन्न संपूर्ण बनाना है। हम सब बाबा के बच्चे यहाँ आए हैं बाबा के जैसा बने, लक्ष्य तो यही है ना, संपन्न बने, समान बने, जैसे ब्रह्मा बाबा इतने सब बच्चों के बीच में रहते हुए, इतनी सारी जवाबदारियां संभालते हुए, अंदर की उपरान वृत्ति से, वैराग्य वृत्ति से संपन्न बन गए। संपूर्ण एक साल का गहरा पुरुषार्थ जो बाबा का रहा है 68 का, एक दिन की बात सुनाता हूं, आप शायद कोई कोई को पता हो, हमारे यज्ञ के दादा थे विश्व किशोर दादा, जिनको दादियां कहती थी भाव, बड़े भाई को भाव कहते हैं, और वो दादा बाबा के लौकिक में भतीजे थे, भाई के लड़के थे। और जब से यज्ञ की शुरुआत हुई, बिजनेस में भी और यज्ञ में भी, वो पूरा बाबा की राइट हैंड, हर कार्य में आगे, बाबा तक बात नहीं जाए मैं संभाल लूं, इतना वफादार ईमानदार यज्ञ रक्षक थे। तो वो यहाँ से छुट्टी लेके जा रहे थे, कुछ ऑपरेशन की जरूरत थी, तकलीफ थी, हर्निया का ही था, लेकिन बॉम्बे ले गए रमेश भाई यहाँ से उनको, और 20 मार्च 68 को पहले ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद ठीक भी हुए, लेकिन फिर ठीक होते होते अचानक शरीर छोड़ गए। और जब शरीर छोड़ा तो सब में हलचल हो गई, क्योंकि कैसे अचानक बाबा का बच्चा गया है, बहुत राइट हैंड है सेवा में। तो यहाँ पर योग हुआ, ये हाल तो नहीं था, छोटे हाल में दादियाँ सब योग में बैठी, और जब दादियाँ योग में बैठी तो एक संदेशी के तन में शिव बाबा आए रात को 2 बजे, और 2 बजे रात को एक तन में प्रवेश होकर के मुरली चलाई दादियों के बीच में। और वो मुरली तो ऐसे कोई रिकॉर्ड नहीं करता था, लेकिन हमारी दादी रतन मोहिनी को बड़ा हैबिट थी, आदत थी, कागज लेके ही बैठती थी, डायरी पेन लेके बैठती थी। तो जब बाबा ने बोला तो वो सारी मुरली वो लिखी उन्होंने, टाइप नहीं हुई, छपी नहीं। तो उसमें बाबा ने ब्रह्मा बाबा के गुप्त पुरुषार्थ की कई बातें सुना दी। देखो ये जो बूढ़ा बाबा है, शिव बाबा ने कहा, ये बूढ़ा बाबा बहुत गुप्त पुरुषार्थ कर्मातीत बनने का कर रहा है, इसलिए आप बच्चे इसको कोई भी प्रकार से रुकावट नहीं डालना, हाँ में हाँ मिलाना और जो कहता है वो करना। इसलिए बाबा ने बहुत अच्छी करीब 3-4 पेज की मुरली चलाई और दादी ने पूरा नोट किया, एक एक बात सुनाई। बाबा कुछ नहीं बता रहा था किसी को, धीरे धीरे अपने आप को उपराम कर रहा था, मकान बनाना है, ये करना है, सब कुछ करना है, ख्याल हर प्रकार का, लेकिन करते हुए भी सबसे न्यारा सबसे प्यारा। कोई समाचार सुनाने के लिए आए, हाँ बच्चे तुमने लिखा था ना, फिर क्यों रिपीट करते हो, विस्तार को सार में ले लिया। जहां पर 10 बात से काम होगी वहां 2 बातें। एक दिन दीदी चक्कर लगा के भंडारे से आई तो कोई जोर जोर बोल रहे होंगे भंडारे में, तो बाबा को सुनाने लगी, तो दीदी की शक्ल पर थोड़ा आ गया होगा, कैसे कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं। तो बाबा बहुत प्यार से बोलता है मुस्कुराते हुए, बच्चे बोल हो रहे हैं, झगड़ हो रहे हैं, चेहरा तुम्हारा बदल रहा है, अपनी स्थिति नहीं बिगाड़ो, ये सब होने दो। माना होते हुए भी, सब कुछ जानते हुए बाबा एकदम न्यारा प्यारा उपराम हो गया, शिक्षाएं देने का रूप बदल गया। आवाज में आकर के गुड मॉर्निंग करते थे, कई बार बाबा कहते ना बच्चे उल्लास से कहना चाहिए गुड मॉर्निंग, फिर मुरली चली, अरे बच्चे आवाज में क्यों आते हो, आवाज में आने की जरूरत नहीं है, गुड मॉर्निंग कहने की जरूरत नहीं है, ये गीत कविताएं थोड़ी योग में होती हैं, इनकी कोई जरूरत नहीं है। अब बाबा अव्यक्त होते गए, वैराग्य जो आया परिवर्तन, एकदम न्यारे प्यारे उपराम। और 4 बजे उठ करके वहां से उठे, कमरे से इधर पहाड़ी थी जहाँ ये ऑफिसेज बने हैं, बाबा वहां खड़े हो जाए एकदम, और खड़े होकर के ऐसे लाइट हाउस की तरह पौना घंटा आधा घंटा दृष्टि दें सबको, और सब बच्चे ऐसे घेर लें चारों तरफ से, ऐसी साइलेंस में चले गए जो बाबा को एक घड़ी में टिक टिक होती थी, चिड़िया बोलती थी, वो आवाज भी बंद कर, बच्ची इस बच्ची को हटा दो यहां से, आवाज की दुनिया से परे चले गए। ये वैराग्य वृत्ति ने संपूर्ण परिवर्तन किया जीवन का। हम सब फिर दीदी को प्रैक्टिकल देखा, ओम शांति भवन का निर्माण हुआ, बड़े धूमधाम से उसका उद्घाटन हुआ, 83 की बात है, और दीदी को धुन लग गई, अब घर जाना है, हो गया सेवा, हो गई, अब घर जाना है, अब घर जाना है, कोई बात लेके जाओ, मेरा तो रोज काम पड़ता था, पत्र आते हैं, जवाब देना है, पूछना है, दीदी इसका क्या उत्तर, बाबा की बात लिख दो, घर जाना है, अब घर जाना है। ये थी उनकी वैराग्य वृत्ति। इतना बड़ा यज्ञ, इतनी कारोबार, इतनी सब सेवाएं, और बाबा के बाद पूरा यज्ञ अपने हाथ में कंट्रोल किया। लेकिन जब संपन्न बनने का पुरुषार्थ शुरू हुआ, हर बात से डिटैच हो गई। जब तक हम वैराग्य के वास्तविक अर्थ को समझें, एक तो हम कहते हैं ये जो विकारों की आग है उससे वैर चाहिए, वैराग, विकारों की आग से वैर, काम क्रोध को अग्नि कहते हैं। जब तक देह मन के विकारों से वैराग्य नहीं आया है तब तक परिवर्तन संभव नहीं है। बहुत बड़ा वैराग्य आंतरिक चाहिए। आप रोज मुरली सुनो, रोज क्लास करो, रोज योग करो, लेकिन 10 साल 15 साल 20 साल पुरुषार्थ करने के बाद भी उस संस्कार परिवर्तन नहीं। अगर कोई ने गहराई से तपस्या के रूप में, योग अग्नि के रूप में तपस्या नहीं की है, तो संस्कार ऐसे हैं जैसे हमारे जगदीश भाई कहते थे, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी के टेढ़ी, इतनी जल्दी बदलते नहीं है। हाँ, हम दब जाते हैं, दबा लेते हैं, अच्छे संग से, अच्छा भोजन, अच्छा संग, अच्छी पढ़ाई, अभ्यास करते करते वो संस्कारों पर जैसे एक परत आ जाती है। परत कोई पर कोई चीज हो ना, बीज, उसके ऊपर आप ढकते जाओ ढकते जाओ ढकते जाओ, लेकिन जब वो ढक्कन हट जाएगा ऊपर का, तो बीज को अगर थोड़ा भी हवा पानी धरती मिलेगी तो बीज अंकुरित हो जाएगा। इसलिए संस्कारों का जो बीज है, देह मान का जो बीज है, वो एकदम अंदर अंदर हम दबा के अगर रखा हुआ है 5-6 मास 8 मास भी। मम्मा की एक बात मैं सुनाता हूँ, बहुत सुंदर ढंग से मम्मा सिखाती थी कि बाबा के कई बच्चे बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं, अमृत वेला करेंगे, मुरली क्लास रेगुलर करेंगे, सब कुछ अभ्यास करेंगे, 8-9 मास तक एक रस स्थिति में रहने के बावजूद अगर किसी दिन उनके अनुसार कोई बात नहीं हुई, कोई ने उनकी बात सुनी नहीं, मानी नहीं, अंदर उन्होंने अपना अपमान महसूस किया, तो इतना जोश में आ जाते हैं जो 5 मिनट का वो गुस्सा 9 मास के किए हुए पुरुषार्थ को खत्म कर देता है। कि इतनी मेहनत, लेकिन वो गुस्से में इतना आ गए जो उनका रिकॉर्ड खराब हो गया। इसलिए समझदारी क्या है, अगर हम सब सचमुच अपना परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन तो हर एक चाहता ही है, और सबसे बड़ा परिवर्तन है देह अभिमान, देह भान, देह अभिमान, देह अहंकार, और इसको बहुत सूक्ष्म अगर देखेंगे तो कोई भी इसे छूटा नहीं है, ये एक दिन हंसे की बात सुनाता हूँ। यहाँ पर हमारे लोगों की, कुमारों की सिल्वर जुबली मनाई गई। सिल्वर जुबली के बाद गोल्डन जुबली मनाई गई। बहुत अच्छा तैयारी हुई, धूमधाम। तो मैं थोड़ा इन बातों से अलग रहता हूँ, तो मैं नहीं आया, प्रोग्राम में नहीं गया। मैंने कहा मेरा नाम नहीं लिखो, मेरी अभी तक सिल्वर जुबली नहीं हुई। वो तो गई थी सब। तो दादी मेरे को मिली, इधर आओ इधर आओ, देखते तो सबको है ना कौन कौन नहीं आया। तुम तो नहीं आया फंक्शन में। दादी मुझे क्या करना, इतनी सौगातें लेकर के इधर दो उधर दो, मेरे पास बाबा ने सब कुछ दिया। अरे तेरे अंदर बहुत देहमान है, ठोका मेरे को अच्छी तरह, देहमान है। तो मैंने कहा दादी देहमान खत्म हो जाएगा तो आत्मा कर्मातीत बन जाएगी। हम लोग तो अभ्यास तो यही करते हैं, हमारा देहमान खत्म हो जाए। कहीं ना कहीं तो अभिमान अभी तक है सब में, चाहे भान में है, मेल फीमेल का भान तो है ही है। और जरा भी कुछ करते हैं, बहुत बहुत बेले हैं जिनको बिल्कुल ना हो मैंने किया। अब बाबा चाहते हैं इनके अंदर वो मैं समाप्त हो जाए, मैं मर जाए। मैंने किया, मैं करता हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ। ये जो अंदर का ये मैं है, वो अभिमान के रूप में कहीं ना कहीं व्यक्ति को बड़े ऊंचे अलग प्रकार के नशे में रखता है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभिमान को मारो। अहंकार को मारना ही है, योगी वो है जिसने अहंकार को मारा। लेकिन हम सबको बड़ा गुप्त पुरुषार्थ करके नेचुरल आत्म अभिमानी स्थिति बन जाए। हर एक आत्मा पार्ट बजा रही है, आत्माएं अपना खेल खेल रही हैं। ये ड्रेस पहनी हुई आत्मा ने, इसका अभ्यास बहुत चाहिए। और ये अभ्यास अगर नेचुरल हो गया तो जो इंद्रिय आकर्षण है, जहां पर हम सब कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, देखने का, सुनने का, बोलने का, खाने का, घूमने का, स्पर्श करने का, ये रूप रंग रस जो भी हैं, वो सब इंद्रिय आकर्षण समाप्त हो जाएगी। जब वैराग्य आ जाएगा आंतरिक, तो जैसे कोई भी चीज नीरस लगेगी, असार, कोई संसार में सार नहीं। और इस कलयुगी सृष्टि में मुझे कुछ नहीं चाहिए। जहां आसक्तियां हैं वहां माया आ सकती है, कहीं ना कहीं प्रवेश कर सकती है। जहां कामनाएं हैं वहां पर हम सामना नहीं कर सकते। बहुत कुछ बाबा ने गहरी बातें सुनाई हैं। अगर सचमुच आंतरिक वैराग्य है, हम कोई दिखावे का वैराग्य नहीं कर रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं बड़े सूखे सूखे, ऐसे चेहरे पर भी रौनक नहीं है, एकदम ऐसे रहते हैं वैराग्य, ऐसा वैराग्य नहीं, हम उदासी वैरागी नहीं है। प्रवृत्ति में है, सेवाओं में है, इतना सब करते हुए भी, सबके बीच में रहते हुए भी इन बुराइयों से, इन आकर्षणों से वैराग्य है। और उसका आधार है आत्मिक स्थिति का अच्छा अभ्यास। आंख खुलते ही मैं आत्मा इस शरीर में प्रवेश हुई हूं, इन कर्मेंद्रियों का मैंने आधार लिया है कर्म करने के लिए, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए बाबा ने मुझे भेजा है। खूब कर्मेंद्रियों से कर्म करो, कर्म के बिना तो हम इस कर्म क्षेत्र पर रह ही नहीं सकते हैं। लेकिन कर्म का कहीं बंधन न बन जाए वर्तमान समय, इस बात को बहुत ध्यान देना। बंधन दो रीति से बनते हैं, और वैराग्य का दूसरा अर्थ बता रहा हूं। एक वैर, दूसरा राग। किसी से वैर रख लिया तो भी बंधन बन जाएगा, और किसी से राग हो गया, लगाव हो गया, अधिक स्नेह हो गया, वहां बंधन बन जाएगा। जब वैराग्य वृत्ति रहती है तो न काहू से दोस्ती, न काहू से वैर, सब बहुत अच्छे, सब अच्छे हैं, किसी से भी वैर विरोध नहीं है। कैसे भी संस्कार वाले हैं, वैरायटी हैं, भिन्न हैं, एक जैसे होंगे भी नहीं, लेकिन हमारे दृष्टिकोण में सब बाबा के बच्चे पुरुषार्थी हैं, सब अपने आप को चेंज करेंगे। मुझे बदलना है, ये बदलेगा या नहीं, ये आस नहीं रखनी। बाबा ने हमें ये मंत्र दिया है, मैं बदलूंगा तो जग बदलेगा, ये बदलेगा तो मैं बदलूंगा, ऐसा मंत्र नहीं हमारा। इसलिए जहां परिवर्तन करना है वहां मुझे परिवर्तन करना है। तो इसलिए बहुत अंदर से एक लक्ष्य हो, पांचों विकारों के सूक्ष्म रूप को समझने की जरूरत है। हमने ऊपर ऊपर से तो पांचों को जीता है, लेकिन उसका जो सूक्ष्म रूप है वो बहुत गहरा है और अंदर अंदर बीज के रूप में, संस्कार आदतों के रूप में छिपा हुआ है। जैसे काम विकार ऊपर से हम जीत लेते हैं, लेकिन अंदर अंदर उसके संकल्प विकल्प चलना, वैसे चित्र देखना, उसकी तरफ आकर्षण होना, कई प्रकार से ये विकार अंदर सताता है। जब तक इस पर पूरी नजर नहीं रखी गई तब तक इसको जीता नहीं जा सकता। भले हम कहते हमने काम को जीत लिया है, ये महाशत्रु है और इसके लिए हम सबको बहुत गहराई से आत्म अभिमानी स्थिति में रहने का अभ्यास करना है। फूल वैराग्य जब देह मान से आएगा तब इस आकर्षण से हम मुक्त हो सकेंगे। क्रोध, भले कहते हैं हमें गुस्सा नहीं आता, हम तो बिल्कुल शांत हैं, शीतल हैं, लेकिन उसकी काली आग बाबा कहता है ईर्ष्या है। ईर्ष्या हो जाती है, ये आगे बढ़ रहा है, उसका नाम हो रहा है, मैं इतना करता हूं, मुझे कोई नहीं पूछता है। सूक्ष्म रूप क्रोध का जो है अंदर अंदर जला रहा है, एक सता रहा है, दूसरा जला रहा है इंसान को। और हम कहते हैं हमने क्रोध को जीता है, जब तक वैराग्य नहीं है तब तक इसको जीता नहीं जा सकता। वैराग्य चाहिए, नाम मान शान पद पोजीशन क्या चाहिए, क्या लेकर के आया, क्या मुझे चाहिए। मैं कभी कोई पूछता है ना, कोई कोई मत, ये पद मिले, ये पोजीशन मिले, मैं ये बन जाऊं, मैं तुम बन जाओ भाई, मुझे तो जहां हूं वहीं ठीक हूं, बाबा ने जितना बनाया उतना बहुत कुछ है। क्यों आकर्षण, क्यों, क्या चाहिए मुझे, क्या लेके आए थे। वैसे दुनिया में कहते हैं क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, लेकिन उसकी तरफ आकर्षण नहीं है। थोड़ा नाम हो, मान हो, शान हो, पद मिले, कुछ हमको लोग पूछें, अंदर से आंतरिक वैराग्य, उसका परिवर्तन। लोग वृत्ति भटका रही है इंसान को, एक सताता है, दूसरा जलाता है, तीसरा भटकाता है, पैसा पैसा पैसा, साधन सुविधाएं, उसके पीछे व्यक्ति भटक रहा है। चाहनाएं बढ़ती जा रही है और बाबा इसको पता क्या नाम देते हैं, चाहना चूहिया है, चूहिया वो नहीं, चूहा नहीं, चूहेरा बाबा बोलता है जमादार को, सिंधी में बोलते हैं, वो अछूत बना देती है। पैसे के पीछे भागते रहते भागते रहते, दो रोटी खानी है, प्रभु के गुणगाने हैं, लेकिन उसकी बजाय धन संग्रह करने की जो वृत्तियां हैं, पाप करेंगे, झूठ बोलेंगे, छिपाएंगे, चोरी करेंगे, रिश्वत लेंगे, रिश्वत देंगे, ये जो भ्रष्टाचार जिसको आज दुनिया में कहते हैं, ब्राह्मण आत्माएं भी इससे बहुत मुश्किल से मुक्त हो पाती हैं। कहीं ना कहीं उसके पीछे साधनों के पीछे, धन के पीछे भाग रहे। आंतरिक जब वैराग्य आ जाएगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाबा मैं अंत तक दो रोटी खिलाने के लिए बंधा हुआ है, दाल रोटी खिलाएगा, भूखा नहीं रखेगा, इन साधनों को हमें संग्रह नहीं करना है, तब हमारी अंतिम स्थिति में अंतमति सोगति होगी, नहीं तो कहीं ना कहीं भटक जाएगी आत्मा, मोह फंसा रहा है एक दूसरे। कहते मेरा में कोई नहीं, मेरा मोह नहीं है, लेकिन जब अचानक कोई चला जाता है शरीर का स्नेही संबंधी, तब पता चलता मोह की रगें क्या है। सूक्ष्म में उनकी याद सताती रहती है, नींद में भी स्वप्न में भी वही घूमता रहता है, भटकती है बुद्धि उसके कारण, फंसा हुआ व्यक्ति। और अहंकार तो लटकाता है, देह अहंकार तो लटका देता उल्टा, मैं मेरे जैसा कोई नहीं। इसलिए बाबा ने इन सब विकारों पर जीत प्राप्त कर इसके परिवर्तन के लिए हम सबको विशेष कहा है तपस्या। और हमारी तपस्या है तीन शब्दों की, अंडरलाइन करना। तपस्या ऐसे नहीं खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, गुफा में चले जाओ, वो तपस्या नहीं है। तपस्या का पहला अर्थ है आंतरिक वैराग्य, कुछ नहीं चाहिए, देखते हुए भी नहीं देखना है, कोई आकर्षण नहीं, कहीं पर भी कोई खिंचाव नहीं, मैं बाबा का बाबा मेरा, एक बल एक भरोसा, एक बाबा दूसरा न कोई, ये है तपस्या। एक है वैराग्य, दूसरा है एकता, एक व्रता, और तीसरा है दृढ़ता संपन्न संकल्प। कुछ भी हो जाए ऐसा संकल्प करो जो उस संकल्प से हटेंगे नहीं, मिटेंगे मरेंगे लेकिन हटेंगे नहीं, ऐसा दृढ़ संकल्प करने वाला ही पास हो सकता है, विजयी हो सकता है। नहीं तो आप अभी संकल्प करोगे, बड़े अच्छे वातावरण में आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, और वहां जाकर के जैसे थे वैसे के वैसे, तीन दिन भट्टी करके गए बस, बहुत अच्छा है, छाप तो पड़ी लेकिन हमारा आंतरिक परिवर्तन हो जाए, हमारे संस्कार शुद्ध हो जाए। वास्तव में इस भट्टी का मूल लक्ष्य है संस्कार शुद्धि, अशुद्धियां समाप्त हो जाए, और वो तभी होंगी जब हम बहुत गहरी महसूसता से तपस्या करेंगे, गहरी महसूसता कि ये मेरे ब्राह्मण जीवन में विघ्न रूप है, इसे मुझे परिवर्तन करना है। पक्का कर लो, कुछ भी हो जाए, जब मैंने उस दुनिया से उन बातों से मुंह मोड़ लिया, जब मैं एक दूसरे पथ का राही हूं, तो पीछे मुड़ करके मुझे नहीं देखना है। जो पीछे की जीवन थी वो बीत गई, वो खत्म हो गई, कब्र दाखिल हो गई, अब तो मुझे आगे बढ़ना है। तो हमें संपन्न संपूर्ण बनाने में वैराग्य बहुत बड़ी मदद करेगा। और अचानक एक दिन मैंने गुलजार दादी से बोला, दादी मधुबन की कई बातें होती, हमारे पास तो सारी दुनिया के समाचार रहते, सब पत्र में ही पढ़ता दादियों के। तो एक बार दादी को मैंने बोला, दादी ऐसे ऐसे है, ये तो परिवर्तन कब होगा आखिर? कहती जिस दिन ठोकर लगेगी ना, वैराग्य आएगा, तब परिवर्तन होगा। सहज नहीं है परिवर्तन ऐसे, जब इंसान को ठोकर लगती है तब लगता है ठीक नहीं है, तो ठोकर भी ठाकुर बना देती है। तो ऐसा समय आएगा जो अचानक व्यक्ति के अंदर से वैराग्य आ जाएगा। जैसे आज साधन मिले हैं, सुविधाएं मिली हैं, सब प्रकार से हम संपन्न बैठे हैं, लगता है सब कुछ है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को जब हम देखते और सुनते हैं, हमारे यहाँ सामने तो आ सकते हैं ना, नहीं आएंगे। मैं कल परसों लंदन में बात कर रहा था, बोला भाई जी कभी इतनी गर्मी नहीं पड़ी है, 40 के ऊपर लंदन में पारा है। पूरे यूरोप के अंदर जहाँ एसी पंखे थे ही नहीं, वहां पर 41-42 पारा जा रहा है, हजारों सैकड़ों लोग शरीर छोड़ रहे हैं, उनको अनुभव नहीं है गर्मी का, अचानक गर्मी का तूफान आया है, हीट वेव होती ना, हीट वेव आई है, सब परेशान है। अब ऐसे समय में सृष्टि से जो साधन रखे हैं, सुविधाएं रखी हैं, कहते एसी लेने के लिए तो दुकान पर लूट मच गई, एसी दे दो, एसी दे दो। तो आज की दुनिया में जब परिवर्तन हो रहा है, तो बाबा कहता सृष्टि परिवर्तन के पहले स्वयं बदल लो। हमारे जो ऐसे निजी संस्कार हैं, जो हमारे अंदर देवमान वाले सूक्ष्म संस्कार हैं, वो सब बाबा की याद से, योग अग्नि से समाप्त हो जाए। करो तपस्या इसके लिए, और इसके लिए बहुत अच्छी एकांत चाहिए, मन बुद्धि को सब बातों से न्यारा करके, उपराम करके। काम नहीं छोड़ना है, सेवाएं नहीं छोड़नी, प्रवृत्ति नहीं छोड़नी, लेकिन अंदर से सबको छोड़ देना है, दिखावे में नहीं करना कुछ भी, अंदर से वैराग्य वृत्ति रख करके करो सब कुछ, लेकिन न्यारे प्यारे होकर के। ब्रह्मा बाबा ने लास्ट दिन भी सब कुछ किया, लेकिन वैराग्य एक साल से था। जिस दिन वो बाबा की मुरली चली, बिस्कुशोर दादा ने शरीर छोड़ा, बाबा को बदथुल लग गई, मुझे संपन्न बनना है, मुझे कर्मातीत बनना है, सब बातों से बाबा न्यारा होता गया। बच्चे को गोद लेता था, बच्चे ठीक है, दृष्टि से शक्ति ले लो, खेलने जाता, बाहर में जाता था सेवा पर, बच्चे बाबा मना करता नहीं जाना कहीं। बाबा के कहने से रमेश भाई ने कहा, बाबा नई प्रदर्शनी बनाई है बॉम्बे में, प्रदर्शनी उद्घाटन करने आप चलो। बच्चे शिव बाबा मना करता बाहर नहीं जाना, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर आबू में प्रदर्शनी लगाई, म्यूजियम पर, जहाँ म्यूजियम है ना हमारा, तो म्यूजियम में प्रदर्शनी, म्यूजियम के बाजू में होटल में प्रदर्शनी लगाई, और बंदरों का मुंह देखने के लिए बाबा मना करता है, नहीं जाना बाहर। अब रमेश भाई को तो धुन थी, दिखाना तो ही बाबा को प्रदर्शनी। तो उन्होंने क्या किया, सुबह 5 बजे गाड़ी लगा दिया करके, सुबह सुबह 5 बजे, बाबा अभी तो सब सोए हैं और अभी चलो आप। वो हंसमुख दादा थे अहमदाबाद के, उन्होंने और रमेश भाई ने बाबा को बिठाया गाड़ी में और ले गए, सारी प्रदर्शनी दिखाई और बाबा बाहर आके खड़े हुए। बाबा बाहर आके प्रदर्शनी बहुत अच्छी लगी बाबा को, बच्चे बच्चे बहुत अच्छा साधन सेवा का, ये सामने किसका मकान है पता करो, इंक्वायरी करो। इसलिए बाबा यहां पर ये म्यूजियम बना दो, पक्का परमानेंट म्यूजियम बनाओ प्रदर्शनी का। अब ये लोग गए ढूंढने के लिए अहमदाबाद, और वो अहमदाबाद में मालिक रहता था, उसी दिन लिखा पढ़ी कराई। लिखा पढ़ी करा के रमेश भाई ट्रेन से उतरे यहाँ आबू रोड में, और उनको समाचार मिला बाबा ने सिर छोड़ दिया 68 में 69 18 जनवरी। आए रमेश भाई तो बहुत अंदर थे कि बाबा ने कहा म्यूजियम बनाना, ये करना वो करना, अब क्या करना है। तो बाबा आए और बाबा ने रमेश भाई को बोला, बच्चे जो बाबा ने कहा वो करना है, बनाना है। और फिर म्यूजियम बना और उसका उद्घाटन 1 साल के बाद बाबा ने खुद आ करके एक एक चित्र देखा और करेक्शन किया करके गुलजार दादी के तन में पूरा म्यूजियम उद्घाटन किया। तो बाबा तो करण करावनहार है, सब कुछ करता और कराता है, लेकिन बच्चों को सिखाता है कहीं भी फंसना नहीं, न्यारे रहो, प्यारे रहो, उपराम रहो, करो सब कुछ, लेकिन कहीं भी अटैच नहीं हो जाना। तो ये बैलेंस रखेंगे तो परिवर्तन दिखाई देगा। ठीक है, ओम शांति। 11:30 हो गया।